सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पंचतत्व गौर निताय की जय। अद्भुत पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर हरि देवा की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज का हमारा अंतिम अध्याय 21 और श्लोक संख्या 14। ये मयाया तेहत मेत सत्वात् पदारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां रसीशकां कामानराय अपि स्युः। ये मयाया तिहत वेद सत्व पदारविन्दं भव सिंधु पोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशि राशिश कामानिरयपि स्युः। ये मयाया तिहत मेद सत्व पादारविन्दं भव सिंधु पोतम् उपासते कामलवाय तेषां रासा राशिश कामानिरपि स्युः। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य हैं। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं।
जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, तो भी हे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। तात्पर्य बहस डिवाइन विद श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, जैसा कि भगवत गीता के सप्तम अध्याय में कहा गया है, भक्तों की दो कोटियां हैं, पहले वो जो भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भौतिक सुख तो कुकर तथा सुकर भी प्राप्त कर सकते हैं जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। शुकर भी खाता, सोता और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और इस संसार के ऐसे नारकीय सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि चूंकि मनुष्य की इंद्रियां हैं, अतः उसे भी कुत्ते और बिल्ली की भांति उनका पूरा उपयोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर कर्दम मुनि ने इसकी निंदा की है। वो कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन बिताने वाले कुत्ते तथा बिल्लियों के लिए है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं तो वे उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को इच्छा अनुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो ये है कि नारकीय तथा आसुरी लोग ये जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य क्या है, फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वह उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र सुनाकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हत मेधसः कहा गया है, अर्थात जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। इसी प्रकार यहाँ भी कर्दम मुनि कहते हैं, जो योग अभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वे महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यासकर्ता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ऐसे दयालु हैं कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली शुकर बनाकर संभोग तथा इंद्र तृप्ति द्वारा सुख उठाने का वर देते हैं। भगवद गीता में भगवान ने इस वरदान की पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मन वांछित वर देता हूं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वर्गकांतिकं। वंदेहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यं। श्री राधा कृष्ण पादा सगन ललिता श्री विशाखांवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौराई राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत श्लोक जिसकी चर्चा अधिकतर स्वान केंद्रों में होती रहती है कि भौतिक संसार के लोग माया में ग्रसित हैं, हमें भक्त बनना चाहिए और भक्त बनकर के इस भौतिक संसार के प्रलोभन से दूर रहना चाहिए। ये भौतिक संसार का व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या भेद है, वो भी खाता पीता सोता है संभोग करता है और एक भक्त भी इन सब प्रक्रियाओं में दिखाई देता है ऐसा करता हुआ, परंतु दोनों के पीछे का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो अलग है। भक्त कोई भी कार्य करता है तो भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, लेकिन एक भौतिक संसार का व्यक्ति करता है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की संतुष्टि के लिए करता है। तो ऐसी चर्चा अधिकतर हम लोग करते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि श्रीमद् भागवत है, इससे हमको और ज्यादा दृष्टि मिलती है कि हम समझ सके इस भौतिक संसार के लोगों में और एक भक्त में क्या फर्क है। इसे देखा जाए तो हम भक्त बनने के बाद भी हम भौतिकवादी ही कहलाते हैं, क्योंकि हमारी अभी भी रुचि उसी भौतिक संसार में आकर्षण में फंसी हुई है। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रलोभन हमें खींचता ही खींचता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कोई ना कोई वस्तु हमको प्रलोभित करती है, खींचती है। परंतु सबसे उत्तम क्या है, भगवान का भक्त बन जाना। तो ये वहां पर चर्चा हुई है, ये माया याते हत मेद सत्पर। तो माया जो है छलने वाली शक्ति, इसका प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, माया या मतलब छलने वाली शक्ति है। तो छलती कहते हैं शक्ति, तो कहते हैं दो प्रकार की शक्ति है भगवान की, एक अंतरंगा शक्ति, बाहरंगा शक्ति और तटस्था, जिसमें जीवात्मा है तटस्था शक्ति। बाहरंगा शक्ति जो कि हमें प्रलोभित करती है, छलती है, और अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी, जिनकी सेवा में लगने पर व्यक्ति महात्मा बन सकता है। जैसा गीता में कहा गया, महात्मनस्तो माम पार्थाम देवीम प्रकृतिम आश्रित। जो भी देवी प्रकृति के आश्रित होगा वो महात्मा कहलाने योग्य बन जाता है। तो महात्मा कोई व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कोई स्टैंप से महात्मा नहीं बनता है। कोई व्यक्ति महात्मा बनता है जब वो सही मायने में श्रीमती राधा रानी की सेवा करता है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने जाते हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने राधा कुंड पर जब परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि बाकी लोग जो वृंदावन में घूम रहे हैं उनमें और हम में क्या भेद है, वो भी कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं और हम भी गाते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय, श्री पंचतत्वनाथ प्रभुपाद। तो उनमें और हम में क्या भेद है? तो भक्त बोले कि हमको मालूम नहीं है महाराज, आप बताइए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पर वर्णन करते हैं कि उनमें और हम में ये भेद है कि वो लोग भगवान श्री कृष्ण को महान मानते हैं और इसीलिए उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि वो उनको भगवान मानते हैं। परंतु हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं क्योंकि वो गुरु तत्व है, और उनकी सेवा करने मात्र से, क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम करते हैं इसलिए हम भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। तो कोई ना कोई संबंध ज्ञान के अनुसार हम भगवान से जुड़ जाते हैं और उनकी सेवा में रत रहते हैं, जैसे भी करके कृष्ण प्रसन्न हो, क्योंकि राधा रानी चाहती है कि कृष्ण प्रसन्न हो उनकी सेविका। तो ऐसे ही एक माया शक्ति है जो कि बाहरंगा है, उसके भी दो स्वरूप बताए गए हैं, एक है आवरणात्मिका शक्ति और एक है प्रेक्षात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति माया जो है वो एक जीवात्मा के ऊपर ऐसा आवरण बना लेती है कि उसको उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं। उसको हमेशा यही एहसास रहता है, मैं एक शरीर हूं, मैं एक शरीर हूं, मैं एक शरीर हूं, मेरी एक उपाधि है, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसको सारी की सारी उपाधियों से वो हमेशा ग्रसित रहता है। और प्रेक्षात्मिका शक्ति क्या करती है, जब ये आवरणात्मिका शक्ति को निकाल नहीं पाता व्यक्ति, तो ये जो प्रेक्षात्मिका शक्ति है ये उठा करके पुनः इस भव संसार में फेंक देती है, कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी फिर से पुरुष या स्त्री की योनि में, परंतु हमेशा भूला रहता है कि मैं कौन हूं, भगवान का दास हूं। तो जैसा कि इंद्र के साथ भी हुआ था, जब ब्रह्मा जी इंद्र को श्रापित किया गया और इंद्र जब सुअर बनकर के आ गए थे, भागवत में प्रसंग आते हैं, और वापस आए जब ब्रह्मा जी उनको बुलाने के लिए, चलिए देखिए सारे देवी देवताओं के आप लीडर हैं, इंद्र मींस लीडर ना, आप तो लीडर हैं, आप वापस चलिए, तो उनको वापस जाने के लिए जब बुलाने आए तो इतने आसक्त है अपने परिवार में, अपने बच्चों में, कि उस योनि में वो जाकर के राजी नहीं, रस्सियों से खींचा गया तो बोलता है ची 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 मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, इतना ग्रसित है आवरणात्मिक आशक्ति। तो हमको सुनने में तो ये कथाएं बड़ी अच्छी लगती हैं और हमें लगता है ये उन लोगों के लिए हैं जो मंदिर में नहीं आते, परंतु ये कथाएं किसके लिए हैं? ये हमारे लिए ही हैं, जो कि हमको एहसास दिलाती है कि सही मायने में हम भी माया में फंसे हैं, हमें भी ये सारे के सारे रोग सता रहे हैं, है ना। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कोथाय निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, पिशाचिर कोले। तो ये कैसी है माया? पिशाची, पिशाची मतलब डायन, है ना। तो वे व्यक्ति बोल सकते हैं कि अरे हम लोग तो भजन करते हैं, हम लोग डायन से दूर रहते हैं, लेकिन हमको माया रूपी डायन पकड़ के रखती है, व्यक्ति को हमेशा खींचती रहती है इस भव संसार में। अभी ना प्रभुपाद जी की पिक्चर लॉन्च हो रही है पीवीआर पे, तो प्रभुपाद जी को देखने जाए ना जाए बहुत बड़े प्रसन्न है, अभी पीवीआर में घूमने का मौका मिलेगा, तो वहां पर जाएंगे तो बोल रहे पुराने दिन याद आ गए, ऐसे बोल रहे थे कुछ कुछ नारे, हम तो जाया करते थे बहुत सालों से गए नहीं, अभी तो प्रभुपाद जी का पिक्चर आ रहा है तो सब जाएंगे पीवीआर घूमने। तो अभी सोचने वाली बात है ये माया शक्ति तो है, प्रभुपाद जी के वीडियो इतने सारे हैं, ये इंटरनेट पे है, सीडीज अवेलेबल है, उनको कभी किसी ने सुना होगा, लेकिन पिक्चर आई है ना तो अभी सब देखना चाहते हैं, तो पीवीआर देखना चाहते हैं या प्रभुपाद जी को देखना चाहते हैं, ये सोचकर उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए, तो उसी से पता चल जाएगा कि हम कितनी माया शक्ति की ग्रसित हैं। तो ज्यादातर लोग जो है ना प्रीचिंग करने के लिए जब जाते हैं तो बाहरी आवरण को देखकर कई बार उनको लगता है ये मैंने क्या किया, भक्त बनकर के मैंने तो अपना ना सारा बेड़ा गर्क कर लिया, धोती कुर्ता पहनता हूँ, बाल भी स्टाइल से नहीं रख पाता हूँ अभी तो, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास दीक्षा दे रहे थे, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बैठे थे और श्रील प्रभुपाद जी ने उनके हाथ में उनका डंडा दिया और कहा आज से आपका नाम है इधोरी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी, और जैसे ही वो लेने लगे तो प्रभुपाद जी ने वापस ले लिया, तो हैरान हो गए कि प्रभुपाद जी का मूड तो नहीं बदल गया है। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा क्या जब तुम प्रचार करने जाते हो और जब वो प्रचार करने जाते हो और किसी के घर पर जाएंगे तो किसी पैसे वालों के घर प्रचार करने जाएंगे, तो प्रचार करने जाते हैं किसी से डोनेशन मांगने के लिए, जब तुम उनका बड़ा विशाल घर देखते हो तो मन में ये तो नहीं भावना आती है कि अगर मैंने नहीं छोड़ा होता तो आज मेरा भी ऐसे ही होता, ऐसी भावना तो नहीं आती मन? अगर आती है, या फिर उनके बच्चे देख करके, उनकी पत्नी देख करके, अगर मैं संन्यास नहीं लिया होता, अगर मैं ब्रह्मचारी नहीं होता तो आज मेरी भी पत्नी ऐसी होती, आज मेरे भी बच्चे ऐसे होते, ऐसी भावना तो नहीं आती है? तो कहा नहीं नहीं प्रभुपाद ऐसी भावना कभी भी नहीं आती, हम तो भगवान की प्रसन्नता हेतु जाते हैं। कहा फिर ठीक है, ये आपका आज से नाम है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हर एक छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें बता रहे हैं, ऊपर से तो हो सकता है हमारा आवरण बदल गया हो, भक्त जैसा स्वरूप हमने रखा हो, परंतु अंदर से बदला है कि नहीं बदला है बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे केंद्र का नाम दिया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, परंतु हम अभी कैसे हैं? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण क्रिया संघ, क्रियाएं करते हैं भक्त वाली, परंतु हमारी भावना परिवर्तित नहीं हुई। तो भावना परिवर्तित करने के लिए मैं सुन रहा था श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को भक्त बनना है तो एक चीज जरूरी है, क्या है कौन बताएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भक्त बनने के लिए? माया आवरण आत्मिक शक्ति हमारे आवरण को हटा दे और हम दोबारा से प्रेक्षात्मिक शक्ति उठाकर पुनः इस संसार में ना फेंके, उसके लिए क्या जरूरी है कौन बताए? विनम्रता और दीनता। विनम्रता दीनता और बताए। हाँ जी क्या?
हरि चरणों की भक्ति, बहुत सुंदर। जो भी कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है, भावना है कैसी हमारी। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे ज्यादा है इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा, डिजायर। अभी आप सोचते हैं डिजायरलेस डिजायरलेस डिजायरलेस, अभी स्कॉन डिजायर टी भी है, स्कॉन डिजायर टी, तो डिजायर डिजायर इतना सुन के हमें लगता है डिजायर से दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंटेंस डिजायर, एक तीव्र इच्छा जिसके अंदर है वही व्यक्ति कर सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक जगह पर चोर चोरी करना चाहता है, वो भगवान से प्रार्थना करने जाता है कि प्रभु बहुत गरीबी में जीवन कट रहा है, खाना नहीं खाया बहुत दिन से, आज ऐसा हाथ मरवा दो कि बस जीवन सफल हो जाए, वो भी भगवान से प्रार्थना। और एक जो सेठ है वो भी अपनी तिजोरी में चाबी लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बड़े मुश्किल से मेहनत से कमाया, इसकी रक्षा करिएगा, चाबी लगा। अब भगवान के ऊपर इतने सारे बर्डन है, भगवान किसकी इच्छा पूरी करे। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे जिसकी तीव्र इच्छा हो। इच्छा तो दोनों में करी है, पर जिसकी तीव्र इच्छा होगी उसकी भगवान करेंगे, उसकी रक्षा भी कर सकते हैं और चोरी भी करवा सकते हैं। तो क्योंकि हर चीज भगवान की इच्छा से हो रही है, तो तीव्र इच्छा किसकी है? सेवा करने की तीव्र इच्छा है, भक्त बनने की तीव्र इच्छा है, तो हो सकता है कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करें। क्योंकि हो सकता है दूसरा जो हमारा पड़ोसी है वो चाहता हो कभी भक्त ना बने, अच्छा भक्त ना बने, इसके इसके कारण हमारा समाज खराब हो जाएगा, वो भी प्रार्थना कर सकता है और आप भी प्रार्थना करें भगवान मुझे भक्त बनाओ। अब देखना ये कि उसकी सुनते हैं आपकी सुनते हैं किस पर निर्भर करता है, तीव्रता कितनी, इंटेंस डिजायर। जिसकी ज्यादा तीव्रता होगी वो उस पर भगवान कृपा करते हैं। जैसे जैसे इसमें बताया गया कि भगवान जो है वो कहते हैं भगवान के बारे में हत मेधसा कहते हैं उन व्यक्तियों को जिनका दिमाग खराब हो चुका है। तो ऐसे जिनका दिमाग खराब हो चुका है उनको कितना भी प्रचार करो उनको समझ में नहीं आता, तो ज्यादा प्रचार भी नहीं करना चाहिए, प्रचार भी उन्हीं को करना चाहिए जो कि प्रचार को सहन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कई कई लोग ऐसे प्रचार करने जाते हैं, बोले जी आप किसकी भक्ति करते, बोले शिव जी की भक्ति करते हैं, अरे शिव जी की भक्ति करते हैं आपका दिमाग खराब हो गया, ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह ऐसे वर्णन करेंगे, आप तो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो चुका है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा जो हट में बसा व्यक्ति है उसको अगर हम ऐसा प्रचार करेंगे तो क्या लगता है वो कभी आएगा मंदिर में? ऐसे हट में बसा जो है जिनकी बुद्धि खराब है उन लोगों के लिए चाणक्य पंडित कहते हैं उपदेशो ना मूर्ख नाम प्रकोपाया ना संत दे, ऐसे उपदेश मत दो मूर्खों को क्योंकि प्रकोप मतलब गुस्सा करेगा लेकिन संत नहीं बनने वाला है। तो वो कैसे प्रचार करें उन लोगों को? इंटेंस डिजायर यह है कि प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम पूर्वक, अगर आप प्रेम से उनको बोलेंगे कि अच्छा अच्छा आप शिव जी का भजन करते हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हाँ शिव जी तो वो भगवान कृष्ण के परम भक्त है, वैष्णव है, हमारे यहाँ भी शिव जी को प्रणाम किया जाता है, वांछा कल्पतरु कह के बहुत प्रणाम करते हैं, ऐसे है बहुत सुंदर, आप तो भक्ति के एकदम प्रकाष्ठा पे, आप तो वैष्णवों में महान वैष्णव जो है शिव उनकी उपासना करते हैं, बहुत अच्छा, आपको तो आना ही चाहिए हमारे मंदिर में और भागवत सुनना चाहिए, ऐसे प्रचार करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से अगर प्रेम पूर्वक किसी भी चीज को डील किया जाए तो हो सकता है। जैसे भगवान जब क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे तो एक कछुआ था जो कि भगवान के चरणों को छूना चाहता था, तो उसकी तीव्र इच्छा थी, है ना, लेकिन लक्ष्मी जी वहां पर जो है ना क्या कर रहे हैं, पाद सेवा कर रहे हैं भगवान की, पाद सेवनम, भगवान के चरण दबा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो चाहती नहीं है कि उनकी सेवा में कोई इंटरफेयर करे, है ना। तो जब देखा कि कछुआ है जो कि भगवान को चरणों को छूना चाह रहा है तो उसको क्या कर दी, भगा दी वहां से, हट हट कर दी। वो कई बार प्रयास किया लेकिन भगवान, उसकी तीव्र इच्छा थी भगवान का पैर छूने की, भगवान के चरणों को स्पर्श करने की, परंतु लक्ष्मी जी उनको आने नहीं दे रहे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्दी ही राम रूप में प्रवर्तित होने वाला, अवतरित होऊंगा, तब तुम्हें मैं अपने चरण स्पर्श करने का मौका दूंगा। तो ऐसा जो कछुए था वो क्या बन करके प्रकट हुए, केवट बन करके प्रकट हुए। ऐसे जो केवट थे वो बैठे हैं और भगवान सीता राम लक्ष्मण और उनके निषाद राज ये सभी लोग भगवान की जो है ना यात्रा, जो जंगल में भगवान वनवास कर रहे हैं उसमें यात्रा में थे, तो देखा कि नदी पार करनी है और नदी पार करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, एक नाविक की, जो केवट होता है नाविक। तो देखिए भगवान का कितना सुंदर अरेंजमेंट है, एक भक्त बता रहे थे कि वहां पर स्ट्राइक भी थी उस दिन, स्ट्राइक हो जाती है ना, जैसे ऑटो स्ट्राइक, बस स्ट्राइक, दिल्ली बंद, इंडिया बंद, ऐसे करके उस दिन केवट जो था ना, वो सारे के सारे केवट बंद थे, स्ट्राइक पे थे, और सभी अपने अपने घर गृहस्थी में हत ले दशा, मूर्खों की तरह बस पैसा कमाते थे, लेकिन उनको भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा रही थी, इसलिए घर बैठे थे सब अपने। परंतु एक था केवट, उसका नाम तो वर्णन नहीं है, उसकी जाति वर्णन है केवट, ऐसी सबकी जातियां बताई गई है रामायण में, शबरी उनका नाम नहीं है, शबरी तो शबर जाति में उत्पन्न थी, केवट जो कि नाविक होते हैं। तो जो ये केवट थे, इन्होंने जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, इनका मन प्रसन्न हो गया कि बस अभी अभिलाषा पूर्ण हो गई। कब से, कितने कितने वर्षों से जीवात्मा इंतजार कर रही थी भगवान के चरण का स्पर्श करने के लिए, आज भगवान ने मौका दिया। तो कहते हैं जैसे ही लक्ष्मण जी ने बुलाया, उनको कहा कि इधर आओ केवट, लेकिन केवट ने मना कर दिया। मांगी नाव न केवट आना, वर्णन मांग रहे हैं पर केवट ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। तो क्यों मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों के जो रज है, एक चरण है, चरण के नीचे जो धूली है उसकी रज किसी शिला पर गिरी थी, और वो शिला क्या थी, वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई, अहिल्या, है ना। क्या हुआ कि वो सिर्फ धूल गिरने मात्र से, स्पर्श मात्र, स्पर्श भी नहीं हुआ, जो चरण की रज है उसके गिरने मात्र से वो स्त्री बन गई थी। तो आप तो अभी जंगल में नंगे पांव चलते आए हैं, आपकी चरण की रज अगर इसके ऊपर लग जाएगी मेरी नाव पे, तो क्या बन जाएगी, ये स्त्री बन जाएगी। और मेरे घर तो ऑलरेडी एक है, भाई दो दो को कहां रखूंगा, एक का गुजारा नहीं होता, बच्चों का खाना पीना नहीं होता, आज भी स्ट्राइक वाले दिन भी मेहनत करने आया हूं, अगर ये भी स्त्री रूप में बदल गई तो दो दो को कहां से रखूंगा। उस टाइम पर डाइवोर्स का जमाना नहीं था ना ऐसे, अभी तो आजकल आ गया है, पहले तो डाइवोर्स सोच भी नहीं सकते थे। जैसे एक व्यक्ति बॉम्बे में किसी भक्त से प्रश्न पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था, उनसे पूछ रहे थे कि जब कंस को मालूम था देवकी और वसुदेव ये दोनों साथ साथ में रहेंगे और आठवां पुत्र मेरा काल होगा, तो मूर्ख ने एक ही जेल में क्यों बंद किया, अलग अलग जेल में बंद कर दे, तो कभी काल ही नहीं आता। ऐसा वो भौतिकतावादी व्यक्ति, ऐसा मेडिकल स्टूडेंट था, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, उसे लगता है सब कुछ सीमिनल बर्थ होता है ना, वो तो मालूम ही नहीं है, यहाँ पर तो मानसिक गति से, दिव्यता से भगवान का जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं योगी तत्व था, जन्म कर्म सब दिव्य है भगवान का, तो यहाँ पर दिव्यता से भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो सोच रहा है कह रहे हैं तो अलग अलग लग देता। लेकिन जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो जो भक्त थे उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि कंस जैसा राक्षस जो था, जो कि दुर्जन पुरुष सज्जन बनने का ड्रामा कर रहा था, कई बार होता है ना दुर्जन होते हैं नेता आदि, देखे हमने आजकल ना, वो दुर्जन होते हैं परंतु कई बार जब पब्लिक में आते हैं तो श्लोक भी बोलते हैं, योग भी दिखाते हैं, और बहुत सारी चीजें बोलते हैं, सज्जन बनने का ड्रामा करते हैं। लेकिन जो कंस था वो था कौन, दुर्जन व्यक्ति, लेकिन उसने देवकी को उठा करके और कहा कि मैं रथ को चलाऊंगा, सज्जन बनने का ड्रामा था, लेकिन वो सज्जन नहीं था। लोग बोलते हैं कि अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था जब काल के बारे में सुना, ऐसा नहीं है, वो दुर्जन था जिसने बकासुर अघासुर ऐसे राक्षसों से युद्ध किया था, और तीनों लोकों में जा जाकर वो युद्ध करने के लिए शक्तिशाली बन गया था, सभी से युद्ध करता था, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे सज्जन बन जाएगा। वो सोच रहा था मेरा इतनी बदनामी है ऑलरेडी समाज में, कुछ एक अच्छा काम करूंगा, है ना, ऐसे कई लोग हमें डोनेशन दे देते हैं या फिर गीता स्पॉन्सर कर देते हैं, ये सोचते हुए इतना गलत करता हूँ यार, कुछ हेल्प कर दूंगा तो क्या पता मुझे लोग सज्जन मान लें। चलो इसी बहाने हमारा तो प्रचार होता है, लेकिन सही मायने में दुर्जन व्यक्ति सज्जनता का काम करता है तो वो सज्जन नहीं है, दुर्जन ही है। इसीलिए तुरंत जैसे उसने अपनी मृत्यु का सुना, तुरंत उसने मारने का ठान लिया, कहां तो इतना प्रेम था, कहां मारने का ठान लिया। तो लेकिन इतना दुर्जन व्यक्ति भी ये नहीं सोच सकता था कि पति पत्नी के भी अलग रह सकते हैं, लेकिन आज के समाज में अच्छे खासे सज्जन पुरुष जो है वो भी सोचते हैं, हाँ अगर नहीं बनती तो ठीक है अलग हो जाइए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हुआ था, 16 वर्ष की उम्र में, और माता जी 13 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में विवाह हो जाने से क्या होता है कि उनके मन में कभी भी ये नहीं आया कि मैं किसी और स्त्री के लिए, या माता के मन में कि मैं किसी और पुरुष के लिए बनी। लेकिन आजकल क्या है, 30 ईयर्स तक तो करियर बनाते रहते हैं, 30-35 तक तो करियर बनाते हैं, उसके बाद में फिर एक साल तब फिर डिस्कशन चलता है, उसके बाद में फिर करियर चौपट हो जाता है उनका, विवाह के बाद में डाइवोर्स हो जाता है, और बड़ा कॉमन होता जा रहा है ना, सरल विधि से सब लोग अलग रहना सीख जाते हैं। तो कंस जैसा जो था दुर्जन, वो भी नहीं सोच सकता था देवकी वासुदेव का विवाह हुआ है तो उनको अलग अलग रख दो, सोचिए आप। और आजकल सज्जन पुरुष भी दुर्जन जैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे जो केवट थे उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मैं कैसे दो दो स्त्रियों को रखूंगा, एक को छोड़ नहीं सकता है क्योंकि वो त्रेता युग है, तो मैं दोनों को कैसे साथ में रखूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है आपकी जो इच्छा है आप वो करिए। तो भगवान तो जानते थे एक कब से इसकी तीव्र इच्छा है कि मेरे चरण का स्पर्श करे, कहा कि ठीक है जाओ। तो रामायण में लिखा है जासु नाम सुमृत इकबारा उतर ही भव सिंधु अपारा, ऐसे जो भगवान है जिनके नाम मात्र से जीवन चेंज हो जाता है, ऐसे भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका किसी को मिल जाए तो उसका जीवन कैसा है। भव सिंधु अपारा, इस भव सागर से पार करने के लिए सबसे उत्तम विधि है भगवान का नाम, भगवान के विग्रह, भगवान के शास्त्र, इनका स्पर्श करना। तो क्या समझते हैं आप, भगवत गीता का स्पर्श करना भगवान का स्पर्श करना नहीं है, है कि नहीं? भगवान के नाम का स्पर्श करना क्या भगवान का स्पर्श करना नहीं है? तो हम कैसे अपने को केवट से ज्यादा दुर्भाग्यशाली माने? अरे केवट तो बड़ा भाग्यशाली था, हम तो दुर्भाग्यशाली, हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। हमें भगवान का दर्शन होता है परंतु आवरणात्मिका शक्ति ये माया या इससे हमको लगता है कि भगवान हमारे सामने नहीं है। एक पल आएगा जब भगवान मेरे सामने दर्शन देंगे, ऐसा कौन सा दिन आएगा? जैसे लोगों से पूछो अधिकतर नाम जप आप करते हैं नाम जप रोज सुबह, उस जप का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं नाम जप का टारगेट है कि एक दिन हमको भगवान का दर्शन हो, तो सही है कि गलत है? भगवान का दर्शन क्या अभी नहीं हो रहा है? जब आप भगवान का नाम बोल रहे हैं तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलते ही आपके जिह्वा पर नृत्य करते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? ये माया है, आवरणात्मिका शक्ति जो है ना ये छलने वाली, ये हम कभी एहसास ही नहीं दिलाती कि जो हरि नाम है ये भगवान है। इसीलिए हम भी हत मृदशा की कैटेगरी में आते हैं, ये दूसरों के लिए नहीं है। हम सोच रहे अरे वो वाला है, मैं तो तिलक लगाता हूं, मैं हत मृदशा थोड़ी हूं, हम भी हत मृदशा ही है। हमारी मेधा मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि जो है हनन हो चुका है बुद्धि का, कभी एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये विग्रह जो है ये पत्थर नहीं है तो भगवान, ऐसा एहसास नहीं होता। तो केवट के ऊपर भगवान ने कृपा करी, जिनके नाम मात्र को सुमिरन करने से क्या होता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श कर रहे थे, उनका पांव दबाते हैं ना, जैसे भगवान की सेवा करते हैं हनुमान जी बैठे हुए भगवान राम के बीच, तो ऐसे हनुमान जी सेवा कर रहे थे और भगवान के चरण उनके पांव हाथ में थे। तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि हनुमान तुम ये बता सकते हो कि संसार में सबसे उत्तम चीज क्या है? बोले प्रभु अजीब बात करते हैं, जिनके चरण मेरे हाथ में है वही तो सबसे उत्तम है। कहा कि सोच लो हनुमान एक बार और, क्या है संसार में, क्योंकि तुम जो बोलोगे ना वो आने वाले समाज के लोग पालन करेंगे, मैं तो त्रेता युग के बाद चला जाऊंगा साकेत धाम, परंतु तुम तो चिरंजीवी बन करके इस पूरे कल्प तक कथाओं का प्रसार और विस्तार करोगे, तो ये बताओ हनुमान के संसार में सबसे उत्तम वस्तु क्या है? कहा भगवान बोलूंगा तो आप नाराज तो नहीं होंगे? भगवान बोले नहीं बताइए। तो उन्होंने कहा भगवान आपसे उत्तम आपका नाम, आपसे उत्तम आपका नाम। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? अभी पुष्टि भी तो करवाएंगे, हैंस प्रूफ, जैसे अभी कोई थ्योरम क्या से होता है, लिखा आपने लेकिन प्रूव नहीं किया तो वो बेकार है। तो हनुमान जी से पूछा ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हम आप तो ज्ञानियों में कैसे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानियों में, आप तो ज्ञानों ज्ञानी जो है और प्रेमी भक्त जो है उनमें आपका नाम सर्वोपरि है। हे हनुमान आप मुझे ये बताइए कि कैसे मेरा नाम मुझसे भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक जगह तो हम कहते हैं नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामी ना। नाम और नामी में भेद नहीं है, तो नाम है और ये नामी है। अगर नामी बड़ा होगा तो नाम बड़ा होगा, या नाम बड़ा होगा तो नामी बड़ा होगा, कि दोनों में भेद नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया राम से बड़ा राम का नाम या भगवान से बड़ा भगवान का नाम, नाम कैसे बड़ा हो जाएगा? तो आदमी ऐसे सोचता है ना, इस साइज में बड़ा होगा इसलिए, जैसे राम बड़े होंगे तो राम का नाम बड़ा होगा, लेकिन दोनों में तो भिन्नता नहीं है, तो फिर कैसे एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा रह जाएगा। तो ये हनुमान जी से उन्होंने पूछा कि कैसे मुझसे भी बड़ा मेरा नाम हो जाता है, ऐसी चर्चा होती है, क्योंकि मुझमें और मेरे नाम में तो कोई भेद नहीं, हमारी तरह तो है नहीं कि हमारा नाम अलग है, हमारी क्रिया अलग है, हमारा शरीर अलग है और हम अलग है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम, भगवान और भगवान की क्रिया, भगवान और भगवान की लीला, उसमें कोई भेद नहीं। तो पूछा बताओ, तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु, जब आप साक्षात राम रूप लेकर के आते हैं तो सिर्फ त्रेता युग के जो अयोध्या वासी हैं, जो आपका भजन चिंतन करते हैं, उन्हें आप साकेत धाम ले जाते हैं, परंतु जब आप कलयुग में प्रकट होते हैं तो कलयुग में तो आप साक्षात रूप में आते हैं, और खाली अयोध्या वासियों को नहीं, आप किसको, पूरे विश्ववासियों को अपने नाम मात्र से क्या कर देते हैं, तार, सबको भगवत धाम ले जाते हैं। तो आप सोचिए, खाली अयोध्या की कैटेगरी देखे और एक शुलक रूपा जी चैतन्य महाप्रभु ने जिस नाम को पूरे विश्व में प्रचार कर दिया, उस नाम से आज कैसे कैसे लोग जाती हैं, अफ्रीकन जातियां, ऑस्ट्रेलियन जातियां, ऐसे लोग जो है वो भी भगवान के नाम से भगवत धाम जाते हैं। तो साक्षात भगवान ने तो सिर्फ अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेके गए, परंतु आज भगवान का नाम पूरे विश्व के लोगों को भगवत धाम लेकर के जा रहा है। तो भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं भगवान का नाम, इसलिए कहा जासु नाम सुमृत एक बारा उतर ही भव सिंधु अपारा, और भव सागर से पार कर जाता है व्यक्ति अगर भगवान का एक नाम। तो आज तो भगवान का नाम के साथ साथ डबल बोनस, बोनस का ऑफर, भगवान के दर्शन भी होगा। तो जब वो बैठे, उनको जल्दी से गए तुरंत दौड़ के, भगवान ने कहा जो करना है जल्दी करो, भाग करके गए अपने घर से, कलश लेकर के आए जिसे अभिषेक करते हैं, और उन्होंने नदी का जल भर करके तुरंत अपने परिवार को भी बुला लिया। देखिए कितना समझदार थे, ऐसे नहीं हम जैसे सेल्फिश हो जाते हैं ना, कभी गुरु प्रसाद मिले या भगवत प्रसाद मिले, महाप्रसाद, तो हम लोग क्या करते, तुरंत जल्दी से उसको पा लेते हैं, कोई और देख भी ना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी है कि केवट जो थे वो चाहते तो उसी टाइम गंगा जल, जो भी नदी से जल भर करके चरणों पर डालकर स्पर्श करके और अपना भगवत धाम निकल जाते, परंतु उन्होंने सोचा कि एक ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर कर्तव्य है कि वो अपने आश्रितों को भी भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की कृपा है, और गए तुरंत अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के सभी लोगों को, सदस्यों को लेकर के और नदी के किनारे तट पर आए, और आकर के जल को भरा कलश में, और फिर भगवान के चरण अभिषेक करके जो जल मिला तुरंत उसका पान किया और पूरे परिवार के ऊपर छिड़क दिया, है ना, कि सबको मिलना चाहिए ये प्रसाद। ये देखिए, यहां से हमको सीखना चाहिए केवट का प्रचार करने का कितना भाव है, अपने आश्रितों पर प्रचार कर रहे हैं, है ना, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम भक्ति करते हैं लेकिन दूसरों को हम बताते नहीं। तो इस प्रकार से फिर केवट ने जब चरण भगवान के अभिषेक किया, आनंद का अनुभव करके भगवान को कहा भगवान आप नाव में आरूढ़ हो जाइए, भगवान नाव में आरूढ़ होकर के बैठ गए। लक्ष्मण जी सोच रहे थे बार बार ये केवट क्या कर रहा है, हमको जाना है उस पार और इतना समय बर्बाद कर रहा है। और जब नाव चल रही और केवट तो धीरे धीरे नाव को चला रहे थे, और भगवान राम जो है ना मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये तो मेरा प्रिय बंधु है, लेकिन इधर जो लक्ष्मण जी थे उनका चेहरा थोड़ा थोड़ा विकृत होता था, वो कहते गुस्सा करने लगते थे कि भाई तेज तेज चलाओ, तुम इतना धीरे धीरे क्यों चला। तो केवट धीरे इसलिए चला रहे थे क्योंकि अभी मौका मिला है इस माया रूपी संसार की जो आवर्तमय शक्ति है इसको दूर करने का, भगवान के संग का मौका मिला है, तो धीरे धीरे। ऐसे ही नाम जब हम करते हैं तो हमको धीरे धीरे आनंद पूर्वक, भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, लेकिन हम कैसे करते हैं भजताम जल्दी पूर्वकम, मेरी माला हो गया, थैंक यू, आज का टेंशन फिनिश, लेकिन भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, प्रेम पूर्वक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे भगवान का नाम जो है कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। ऐसे भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम संकीर्तन से जीवन परिवर्तित होता है,
तो सोचिए अगर केवट को भगवान का दर्शन मिला तो हमको भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हरिनाम भगवान का दर्शन मिला। हरिनाम प्रभु हर कलयुग में भगवान कैसे आते हैं, कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है, परंतु ये जो माया है आवरणात्मक शक्ति ये हमको उपासित पूजा नहीं करने देती है भगवान की। किस कारणवश? क्योंकि हमारे ऊपर ये आवरण है कि मैं ये शरीर हूं और भगवान तो कभी आएंगे, ये नाम लेना तो मेरे लिए क्या है, एक रोज की क्रिया है, कर्म कांड है। जैसे पहले मैं ओम नमः शिवाय बोलता था, आजकल हरे कृष्णा बोलता हूं, या मैं पहले मंगल के लिए पूजा करता था, आज मैं कृष्ण के लिए पूजा करता हूं। लेकिन भजताम प्रीति पूर्वकम अभी तक हमारे अंदर नहीं आया है, आप में आया होगा पर मेरे में नहीं आया। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये नाम संकीर्तन भगवान का सारे पाप समन कर सकता है। ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। सोचिए आप श्रीमद् भागवत पूरा का पूरा भागवत लोग गहन से सुन लेते हैं, कोई सात दिन सुनता है, कोई महीने सुनता है, कोई सालों साल सुनता है, परंतु ये नहीं जानता नाम संकीर्तन जो है वो भगवान सुखदेव गोस्वामी अंतिम उपदेश दे रहे हैं। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सारे के सारे पाप को शमन करने की शक्ति नाम में है, लेकिन नाम के प्रति रुचि नहीं है क्योंकि ये आवरणात्मक शक्ति माया रूपी चलती रहती है, हमें घुमा रही है संसार में। बहुत सारे काम पेंडिंग है, सारे के सारे काम तभी याद आते हैं जब हम नाम जप करने बैठते हैं। मोबाइल भी तभी बजता है, हमारा व्हाट्सएप भी तभी आता है, हमारे को याद आता है ओहो मुझे चार लोगों को मैसेज भेजना था, अरे उनसे मुझे भगवद गीता के पैसे लेने थे, कल तो उन्होंने बुक ले ली थी लेकिन पैसा नहीं दिया, अरे मैंने उनको बुक्स दी थी लेकिन उनका नाम लिखना भूल गया। ये सारी चीजें तभी याद आती है जब नाम प्रभु हमारे सामने। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जैसे आपने केवट के समक्ष साक्षात रूप में प्रकट हुए, आप हमारे सामने भी आए हैं, पर हमारी बुद्धि ये माया रूपी संसार में इतनी फंसी हुई है कि हम आपको समझ ही नहीं पाए। तो केवट ने जब उस पार उतारा तो भगवान ने सोचा कि इनको क्या दूं, तो भगवान ने उतार करके उनको अपनी हीरे रत्न की जो अंगूठी थी वो प्रदान करी और कहा ये लो केवट, तुम्हारे तुमने मेरे को उस पार से इस पार उतारा है, ये तुम्हारा मेहनताना है, सैलरी जैसे कहते हैं, फिर फीस देना, जैसे ऑटो में जाते हैं ऑटो का किराया, फेयर देना। कहा ये लो तुम मेरी अंगूठी रख लो। अब भगवान को स्पर्श होकर के कोई वस्तु आ रही है लेकिन उसकी भी अभिलाषा केवट जी ने नहीं करी, वो मना करती है कि मुझे नहीं चाहिए। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आप मुझे क्या चाहिए, दीन दयाल जो दीन लोगों पर दया करने वाले प्रभु है, दीन दयाल ऐसे प्रभु अनुग्रह करे, मेरे पर कृपा कर दो, यही चाहिए मुझे, आपकी अंगूठी नहीं चाहिए। और हमको अंगूठी मिली तो क्या सोचेंगे, हे प्रभु आपने कितनी कृपा करी, रोज नौकरी के लिए जाना पड़ता था, आज आपने हीरे की अंगूठी दे दी, आप क्या है, आप मैं नौकरी नहीं करूंगा, आप मैं आराम से अपने घर में भजन कर सकता हूं, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन हम कैसे होने चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान, जो अन्य अभिलाषिता शून्यम व्यक्ति है वो व्यक्ति जब अभिलाषाएं शून्य हो जाएंगी तभी वो क्या कर सकता है, भजन में पक्का हुआ माना जा सकता है, तब उसकी तीव्र इच्छा भगवान की सेवा की हो सकती है। तो ऐसे जो केवट थे उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लक्ष्मण जी बोलने लगे अरे अजीब सा है, इसको कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए कुछ भी, भगवान राम आज तुमको भेंट दे रहे हैं, कल को भगवान आपको यहाँ से आप प्रणाम करके उठे और श्री राम अपने विग्रह से आपको कहे ये लो, आप तो खुश हो जाओगे, चाहे फूली दे दे आपको, अरे वाह भगवान की कृपा, आप तो ये बोलो कि कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अनुग्रह करो यही चाहिए। ऐसी है हमारी स्थिति, केवट की स्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं चाहिए, बस आप उस पर अनुग्रह करें यही मेरी इच्छा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई क्यों नहीं ले रहे हो, कहा देखिए कुछ आचार्य वर्णन करते हैं कि हम दोनों का तो कार एक ही है ना, इसलिए लेने अपने सेम बिजनेस में लेना देना चलता नहीं, जैसे दूध वाले हो, दो दूध वाले हो, तो वो आज मेरी गाय ने दूध नहीं दिया तो कहेगा कि आज तुम मेरा ले लो, कल जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा, तो उसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो हम दोनों तो सेम बिजनेस में है। तो भगवान लक्ष्मण तो बड़े हैरान हो गए देख करके, कहा अभी मैं तुम्हें तीर से फिनिश कर दूंगा, है कैसी तुम यहां से, तुमने कैसा साहस भी किया पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम के बराबर आने का, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम केवट एक नाविक होकर के भगवान राम के बराबर हो। कहा देखिए ऐसा है कि मेरा भी काम है इस पार से उस पार लगाना और इनका भी काम है इस पार से उस पार लगाना, आज मैंने इनको इस पार लगाया है, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मुझे जरूरत होगी तभी ये मुझे उस पार लगा। तो इसलिए हमको भगवान राम से केवट से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हमारे सामने हरि नाम प्रभु प्रकट हुए हैं, तो हम कोशिश करें कि जो हमारी ये भौतिक इच्छाएं हैं जो नरक में ले जा सकती हैं, वो छोड़कर के हम क्या करें, इस छलने वाली शक्ति को भगवान हटा लो और अपने पदारविंदम भव सिंधु गौतम, आपके जो चरण कमल जैसे आपको केवट को प्रदान किए, ऐसे चरण कमल आपके नाम रूपी चरण कमल हमारे हृदय में हमेशा स्थापित रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्णा।